प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज 2 जून 2014 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं अपने सभी प्रिय श्रोताओं को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और उनकी प्रशंसा भी करता हूं कि मुझे लग रहा है कि कल मैंने जो उनसे कीमत मांगी थी afeis.com की कि वे इसके बारे में अपने दोस्तों को अपने परिचितों को बताएं कि वे इस ऑडियो गाइडेंस को सुनें और अगर उन्हें अच्छा लगे तो इसको कंटिन्यू करें, तो आज के जो विजिटर्स के डाटा मेरे पास आए हैं वो बता रहे हैं कि कल आप लोगों में से कुछ लोगों ने डेफिनेटली ऐसा किया है, तभी जो डाटा है, जो विजिटर्स की संख्या है वो सामान्य से थोड़ी सी अधिक है। मुझे बहुत खुशी हुई कि कम से कम आप उन चीजों को एक्शन में ला रहे हैं और फ्रेंड्स, चीजें बदलती ही तब हैं जब चीजें एक्शन में लाई जाती हैं, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता है। मुझे खुशी है कि आप लोग उस जड़ता को तोड़ रहे हैं, एक्शन में आ रहे हैं, बल्कि कुछ फ्रेंड्स ने तो सीधे सीधे लिखा भी है कि वो क्या करने जा रहे हैं, जिसमें HS चौधरी हैं, आदित्य पासवान हैं नोएडा से, चंद्रदीप गांधी हैं हजारीबाग से, कि वो किस तरह से फेसबुक पर डाल रहे हैं, फ्रेंड्स को बता रहे हैं। तो मैं एक बार फिर से सभी का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने इसके बारे में कदम उठाया है और उम्मीद करता हूं कि जिन्होंने अब तक कुछ नहीं किया है वो इसको करेंगे, वे भी कदम उठाएंगे, अपनी जड़ता को तोड़ेंगे और जो ऑलरेडी कर चुके हैं और जो कर रहे हैं वो इसकी कंटिन्यूटी को बनाए रखेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं उन 6 स्टूडेंट्स का जिन्होंने एकेडमी फॉर एक्सीलेंस के अक्टूबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। चूंकि मैंने बताया कि इस बीच में मेल की प्रॉब्लम हो रही थी जिसकी वजह से मेरे पास ये नाम नहीं आ पाए थे, आज ये मेरे पास नाम आए हैं। इसमें है ध्रुव राघव मथुरा से, अशोक कुमार पाल और रईस खान इलाहाबाद से, मनोज कुमार चंडीगढ़ से, संजीव कुमार जम्मू से और पूजा कुमारी कोलकाता से। तो मैं आप सभी का हार्दिक रूप से एकेडमी फॉर एक्सीलेंस की पूरी टीम की ओर से स्वागत करता हूं और मैं आपको अपनी टीम की ओर से विश्वास दिलाता हूं कि आप जो भी उम्मीद करके एकेडमी में आ रहे हैं वो उम्मीद आपकी पूरी होगी और आप एक ऐसा बेस लेकर के सब जाएंगे जो आपके न केवल सिविल सर्विसेज में ही आपकी मदद करेगी बल्कि जो दूसरी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें भी आपको हिसाब फायदा मिलेगा और साथ ही जो आपकी पर्सनालिटी बनेगी, जो सोशल नेटवर्किंग तैयार होगी वो तो अलग से होगा ही, क्योंकि इस क्लास की जो रूपरेखा है वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो उस परंपरागत तरीके से बिल्कुल नहीं है कि आप आएंगे, लेक्चर सुनेंगे, फिर दूसरी क्लास शुरू होगी और एक दिन एकेडमी का ये सेशन पूरा होगा और आप चले जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि मैं बता भी चुका हूं कि जो भी एकेडमी के स्टूडेंट होंगे बाद में उनके लिए एक स्पेशल ऑडियो गाइडेंस का प्रोग्राम शुरू किया जाएगा ताकि वो स्टूडेंट लगातार मुझसे जुड़े रह सकें और सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज बहुत अच्छे से तैयारी कर सकें। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी 6 मित्रों का हार्दिक रूप से एकेडमी फॉर एक्सीलेंस में स्वागत करता हूं। एक सूचना और भी है कि मैं 3 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाए। उनसे आंसर लिखने के लिए कहा था कि वो आंसर लिख करके मुझे भेजें, उसमें से मुझे 2 के आंसर मिल गए हैं। प्रीति का आंसर मिल गया है, धीरेन्द्र उत्तम का भी आंसर मिल गया है। मैं इनको देखने के बाद उनसे बाद में इसके बारे में अलग से बातचीत करूंगा, मैं इस समय का उपयोग इसमें नहीं करना चाहूंगा। धीरेन्द्र उत्तम, आपके लिए एक खबर यह है कि आपने जो आंसर भेजे हैं वो रीडेबल नहीं है, पढ़ने में बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, बहुत ही काले अक्षर हो गए हैं। तो आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि आप इसको अच्छे से स्कैन करा करके अपने आंसर भेजे, जैसा कि प्रीति ने भेजा है। फ्रेंड्स, अब एक बहुत छोटी सी बात हमेशा की तरह मोटिवेशन को लेकर के, वो ये कि कल मैं देख रहा था अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड का फुटबॉल मैच हो रहा था। जो सबसे खूबसूरत बात लगी, आपको मालूम है कि फुटबॉल में पहले 45 मिनट का खेल होता है, फिर रेस्ट होता है, फिर इंटरवल होता है और फिर 45 मिनट का खेल होता है। दोनों टीमें लगातार संघर्ष कर रही थी, जूझ रही थी। हालांकि स्विट्जरलैंड के पास पूरे टाइम में 67% बॉल रही और अर्जेंटीना के पास 67% बॉल रही और स्विट्जरलैंड के पास केवल 33%, इसके बावजूद 90 मिनट का खेल खत्म होते तक दोनों बराबरी पर थे। बाद में 30 मिनट का वक्त और दिया गया और उसमें से 27 मिनट खत्म हो चुके थे, अभी भी स्कोर 0-0 पर था। मैंने और मेरे बेटे ने फैसला किया कि अब ये मैच, इस फैसले के लिए अब पेनल्टी स्ट्रोक का ही सहारा लिया जाएगा। लेकिन मित्रों ये क्या कि अभी केवल दो मिनट बचे हुए थे और अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को की ओर एक गोल कर दिया, गजब हो गया। हम लोग उछल पड़े, केवल दो मिनट बचे हैं और अर्जेंटीना ने एक गोल कर दिया, अब क्या होगा। बट नेचुरल था कि अब स्विट्जरलैंड हारेगा। तीन मिनट जो वेस्ट हुए थे वो और मिले, पांच मिनट का खेल और हुआ, यानी उस दो मिनट को भी मिलाकर के और प्लस तीन मिनट। और मजेदार बात यह है कि इसी दौरान ऐसी स्थिति में जबकि स्विट्जरलैंड एक गोल से पीछे चल रहा है, फिर से स्विट्जरलैंड ने अटैक किया। इतना खूबसूरत अटैक स्विट्जरलैंड ने किया कि अगर उससे पहले वो अटैक इस तरह का करता तो डेफिनेटली वो कई गोल से आगे हो जाता। हालांकि ठीक है, अर्जेंटीना ने भी इससे पहले काफी अटैक किए थे, बल्कि स्विट्जरलैंड की तुलना में अर्जेंटीना ने ज्यादा अटैक किए, लेकिन वो किसी को गोल में कन्वर्ट नहीं कर सके। लेकिन स्विट्जरलैंड ने जो एक पेनल्टी जो उसको किक मिली, पेनल्टी कॉर्नर जो मिला, उसको जिस तरह से हेड किया, वो बॉल पोल से टकराई, फिर से वापस स्विट्जरलैंड के प्लेयर्स के पास आ गई, फिर से स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी ने उसको पैर से हिट किया और पोल के किनारे से वो बॉल बाहर निकल गई। इसके बाद मैच खत्म हो गया। मैं इसके माध्यम से क्या कहना चाह रहा हूं फ्रेंड्स, मैं दो बातें आपको कहना चाह रहा हूं। देखिए, आप अपना बेस्ट करते हैं लेकिन सामने वाला भी अपना बेस्ट कर रहा है। अर्जेंटीना के पास 67% बॉल रही और ज्यादा उसने अटैक किए लेकिन वो गोल नहीं कर सका क्योंकि स्विट्जरलैंड भी कमजोर नहीं थी। ये कॉम्पिटिशन होता है, जो मैं बार बार कहता हूं कि यूनिवर्सिटी के एग्जाम से कैसे अलग है, उसके पीछे यही मकसद होता है कि वहां हर कोई पास हो सकता है, रिजल्ट 100% आ सकता है, लेकिन यहां नहीं है। यहां तो जितनी सीट्स हैं बस उतने ही सेलेक्ट किए जाने हैं। दूसरी चीज जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं अपने कल के ओपनिंग रिमार्क से जोड़कर देखना चाहूंगा, इसके पीछे कौन सा तर्क काम कर रहा है, क्या इस पांच मिनट के आखिरी का जो खेल मैंने अभी आपके सामने बताया है, क्या इसके पीछे कोई लॉजिक आपको दिखाई देता है, कोई मनोविज्ञान दिखाई देता है, कोई लाइफ साइंस दिखाई देता है। दोस्तों सोचेंगे तो आपको भी दिखाई देगा, मुझे दिखाई दे रहा है। वो साइंस क्या है? वो साइंस फ्रेंड्स वही है जिसकी चर्चा मैंने कल कही थी। तीन चीजें होती हैं, या तो आप हमारा दिमाग किसी को देख करके सुन करके टेरराइज हो जाता है, आतंकित हो जाता है, या उसी को देख के सुनने के बाद हम उसको चैलेंज के रूप में लेने लगते हैं, उस चुनौती को स्वीकार करते हैं, या फिर उसके प्रति बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं। ये तीन स्थितियां हमारे दिमाग में आती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब खेल के बिल्कुल दो मिनट बच गए तो शायद स्विट्जरलैंड की जो टीम थी वो कुछ ज्यादा ही निश्चिंत हो गई, और जब स्विट्जरलैंड की टीम तो निश्चिंत हो गई लेकिन अर्जेंटीना ने इसको चुनौती के रूप में लिया कि केवल दो मिनट बाकी हैं और उसने एक गोल कर दिया। लेकिन जैसे ही स्विट्जरलैंड एक गोल से पीछे हुई वो बिल्कुल चौंकी और उसने फिर अपनी उस निश्चिंतता को एक बार फिर से आप समझ लीजिए कि चुनौती के रूप में एक्सेप्ट कर लिया, चैलेंज के रूप में लिया। यहां वो आतंकित नहीं हुआ। देखिए, अगर वो आतंकित होता तो हो सकता है कि एक आध दो गोल और खा जाता, क्योंकि आतंकित मस्तिष्क कभी भी सही निर्णय नहीं ले सकता है, कभी भी संतुलित नहीं रह सकता है। लेकिन वो आतंकित नहीं हुआ, उसने इसको चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट किया और फिर इस तरह का खूबसूरत अटैक किया जिसको देख करके हम लोगों ने दांतों के तले उंगली दबा ली। तो फ्रेंड्स, ये होता है लाइफ साइंस, जीवन का विज्ञान, और जो मन का विज्ञान है याद रखिए वही जीवन का विज्ञान है। जीवन का विज्ञान मन के विज्ञान से अलग नहीं है। फ्रेंड्स, मैं चाहता था कि मैं इसी के संदर्भ में आपसे सांख्यवाद की चर्चा करूं, जो छठवीं सातवीं शताब्दी पूर्व भारत में एक दार्शनिक प्रणाली विकसित हुई थी और इसको लेकर के पिछले साल 2013 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछा गया था, लेकिन अभी मैं इसको ड्रॉप करता हूं। समय की कमी को देखते हुए मैं इस पर आप लोगों से फिर कभी चर्चा करूंगा कि यह सांख्यवाद क्या है, लेकिन बहुत संक्षिप्त में केवल एक लाइन बता दूं कि सांख्यवाद केवल तर्क पर आधारित, बुद्धि पर आधारित, विवेक पर आधारित एक बहुत वैज्ञानिक चिंतन पद्धति है। वो ये मानती है कि अगर कोई घटना घट रही है तो उसके पीछे कोई न कोई ठोस कारण होगा ही। मतलब इस संसार का अगर निर्माण हुआ है तो पदार्थ से हुआ है, और हमारी जो चेतना भी बनी है वो किसी न किसी पदार्थ से बनी है। ये सांख्य दर्शन का मूल भाव है, मूल केंद्र है, और इसी को आप इस अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के इस मैच में अप्लाई कर सकते हैं कि अगर स्विट्जरलैंड हारा है तो उसका कोई कारण है, और अगर अर्जेंटीना जीता है तो उसका भी कोई कारण है। ये किसी बहुत अदृश्य शक्ति की वजह से नहीं हुआ है, कोई अलौकिक शक्ति इसके पीछे काम नहीं कर रही है, इसके पीछे कोई रहस्य छिपा हुआ नहीं है। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं कल के AIR न्यूज पर। जो सबसे इम्पोर्टेंट खबर जो कल के AIR न्यूज में है फ्रेंड्स, और आज के अखबारों में भी आपने पढ़ा होगा, वो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लेकर। मैं समझता हूं कि ये सिविल सर्विस के परीक्षा के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू धीरे धीरे इमर्ज हो रहा है। अगर आपको ध्यान हो तो जैसे ही सुब्रमण्यम जी को सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बनाए जाने से सरकार ने इनकार किया था, आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 लोगों के नाम सरकार के पास भेजे थे, उसमें 2 को सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया, सुब्रमण्यम जी को एक्सेप्ट नहीं किया। इसको लेकर के एक विवाद की स्थिति हुई। सुब्रमण्यम जी ने फिर उस पर यही कहा कि चूंकि उनका संबंध पहले के कुछ मामलों में रहा है, जो सरकार की में अभी जो पार्टी सरकार में है उनको सूट नहीं किया, इस वजह से उनको नहीं किया गया। फिर IB की रिपोर्ट की भी बात हुई और उनको सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस नहीं बनाया गया। फिर बाद में उन्होंने सम्मानपूर्वक अपना नाम वापस भी ले लिया। कल पहली बार सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है मिस्टर लोढ़ा, न्यायमूर्ति लोढ़ा, उन्होंने इस पर कमेंट किया है, और सच पूछिए तो बहुत सीवियर कमेंट किया है, बहुत ही तीखी टिप्पणी आप कह सकते हैं कि किया है। उस टिप्पणी के 2 वाक्य सबसे तीखे हैं। नंबर 1 कि मैं किसी भी कीमत पर न्यायपालिका के स्वतंत्रता पर किसी भी तरह के आघात या हनन को बर्दाश्त नहीं करूंगा, और दूसरी ये कि अगर इसके लिए मुझे अपना पद भी छोड़ना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। दोस्तों, अब आप देखें कि इसके साथ ही एक बहस छिड़ गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करे, सरकार करे या पूरी तरह से न्यायालय ही करे, और अगर न्यायालय करे तो उनके लिए क्या आधार बने। हालांकि उसकी काफी कोशिश की गई है कि न्यायालय ही सबसे पहले, जो सुप्रीम कोर्ट ही है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वही नाम प्रोवाइड करते हैं, सरकार उसी में से ही चुनती है। लेकिन अगर उसके चुनाव में इस तरह के दबाव काम करने लगेंगे तब सुप्रीम कोर्ट की जो स्वतंत्रता है वो निश्चित रूप से बाधित होने लगेगी। और मित्रों, जो सबसे बड़ी बात है, अब आप इसको इस एंगल से देखिए कि सवाल सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता का नहीं है या किसी भी इंस्टीट्यूट की स्वतंत्रता का नहीं है, सवाल है कि अगर उसकी स्वतंत्रता का हनन किया जाता है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। और इस इम्पैक्ट को आप सिर्फ जुडिशियल इम्पैक्ट से जोड़ करके मत देखिए, पॉलिटिकल इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट, चारों तरफ से देखिए। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से महसूस कर रहे हैं कि किस तरह से लगातार जुडिशियल एक्टिविज्म की बात होने लगी है, न्यायिक सक्रियता की बात होने लगी, कैसे कैसे मामलों में न्यायपालिका ने दखल देकर के एक तरह से स्थितियों को बेहतर बनाने की कोशिश की है। इसलिए क्योंकि वो स्वतंत्र है, सरकार का कोई दबाव न्यायपालिका के ऊपर नहीं है। और पैरेलल आप देखिए कि CBI की जो इतनी आलोचना हो रही है वो क्यों हो रही है, क्योंकि वो सरकार के नियंत्रण में काम करती है। CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो इतने बड़े बड़े काम कर जाता है, या हमारे जो चुनाव आयोग है जो पॉलिटिशियंस की बात नहीं मानता, और यहां तक कि जो सत्ता में है उनकी भी बात नहीं मानता, वो किस वजह से, क्योंकि वे स्वतंत्र हैं, उनकी नकेल किसी राजनीतिक नेता के हाथ में नहीं है, तो वो अपने दायित्व को बहुत अच्छे तरीके से पूरा कर सकते हैं। लेकिन जो CAG है उनकी अपनी एक लिमिटेशन है, ठीक है, जो चुनाव आयोग है उसकी अपनी लिमिटेशन है, वो एक छोटे से क्षेत्र में काम करता है, जो कि हालांकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन उसका क्षेत्र सीमित है, चुनाव तक है। लेकिन जो जुडिशियल है, जो न्यायपालिका है, उसका क्षेत्र तो जीवन के हर फील्ड में है, हर जगह है। ऐसी स्थिति में अगर उसकी स्वतंत्रता बाधित होती है तो सच पूछे तो कहीं न कहीं एक तरह से ये लोकतंत्र के अर्थ को ही कम कर देती है, खत्म भी कर देती है। आप जानते हैं कि लोकतंत्र के 4 मुख्य स्तंभ बताए जाते हैं, जिसमें एक होती है विधायिका, यानी कि संसद जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो बने हुए कानूनों को लागू करती है, उनका पालन करती है, और तीसरी है न्यायपालिका जो देखती है कि कानून का सही तरीके से पालन किया जा रहा है या नहीं, और चौथा स्तंभ प्रेस को माना जाता है, फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो अगर इसमें से कोई भी स्तंभ कमजोर होगा तो डेफिनेटली उसका मतलब है कि लोकतांत्रिक प्रणाली कमजोर हो रही है, यानी कि राजनीतिक व्यवस्था लचर हो रही है। तो इस दृष्टि से मुझे लगता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है ये, सिविल सर्विस के मेंस की दृष्टि से भी, प्रीलिम्स की दृष्टि से भी, इंटरव्यू की दृष्टि से भी और एसए की दृष्टि से भी, तो आपकी नजर इस पर बकायदे रहनी चाहिए। फ्रेंड्स, इसके बाद दक्षिण पश्चिम मानसून की चर्चा थी कि हिमाचल प्रदेश और उधर आ गया है, तो आपको थोड़ा समझना चाहिए कि दक्षिण पश्चिम मानसून क्या होता है, ये पूर्वी उत्तरी पूर्वी मानसून क्या होता है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं यहां डिस्क्राइब नहीं करूंगा, मानसून पर हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। एक बात मैं आप लोगों से और शेयर करना चाहूंगा कि आप सैयद अकबरुद्दीन जी की बात सुन रहे हैं, वो प्रवक्ता हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, इराक मामलों में और दूसरे जितने भी इवेंट हो रहे हैं विदेशी और भारत के संबंधों को लेकर के, उसमें वो प्रवक्ता के रूप में आते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि ये क्या होते हैं। याद रखिए कि जो अकबरुद्दीन जी हैं वो इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर हैं, जो इंडियन फॉरेन सर्विस भी आपके सिविल सर्विस का ही एक पार्ट है और जो बहुत ही रेपुटेड सर्विसेज मानी जाती जैसे एक है। तो ये प्रवक्ता जो होते हैं, चाहे वो किसी भी मिनिस्ट्री के प्रवक्ता हो, तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता तो हमेशा विदेश सर्विस के ही होते हैं, लेकिन जो दूसरे मंत्रालय के जो प्रवक्ता होते हैं, आधिकारिक प्रवक्ता, सरकारी प्रवक्ता, मिनिस्टर भी अपनी बात कह सकते हैं प्रवक्ता के रूप में। अगर सुषमा स्वराज जी चाहें तो सीधे सीधे प्रेस को एड्रेस कर सकती है और करती ही है, लेकिन चूंकि हर समय वो अवेलेबल नहीं होती हैं और जरूरत भी नहीं है कि वो हर बार प्रेस के सामने खुद ही आए, तो हर मिनिस्ट्री के पास अपने प्रवक्ता होते हैं जिनको ऑफिशियल स्पोक्समैन कहते हैं। तो ये सरकार के बिहाफ पर कोई भी बात कहते हैं। इनकी विशिष्टता ये होती है जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए कि ये जो भी बात कहें आप ये मान करके चलिए कि ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, मतलब गवर्नमेंट का वर्जन है। उसको फिर आप किसी तरह से इंटरप्रेट कीजिए, वो कीजिए, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर सरकारी प्रवक्ता कोई बात कहता है तो वो गवर्नमेंट वर्जन है। क्योंकि आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो गवर्नमेंट वर्जन है, अपनी बात को प्रूफ करने के लिए। हाँ, एनालिसिस करने के लिए आप दूसरे वर्जन भी ला सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, एक बहुत अच्छी एक छोटी सी ही खबर थी, लेकिन आपको इसे पकड़ लेना चाहिए कि भारत ने ये बात कही है कि आप देख रहे हैं कि इराक में कितने भारतीय फंसे हुए हैं, निकालने की सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है। तो एक बहुत अच्छी बात है कि कुछ नेपाल के नागरिक भी इराक में फंसे हुए। अब नेपाल छोटा सा देश है, पता नहीं उसका दूतावास इराक में है भी या नहीं है, तो भारत ने कहा है कि वो नेपाली नागरिकों को भी वहां से निकालने में मदद करेगा। अब आप देखिए कि सार्क के साथ भारत ने जो संबंधों की शुरुआत की है, पड़ोसी देशों के साथ मित्रता का हाथ बढ़ाने की शुरुआत जो रात प्रधानमंत्री ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें बुलाकर की थी, वो किस तरह से धीरे धीरे इनलार्ज हो रही है, किस तरह से फैल रही है, केवल आपको ये देखना है किस तरह से सबसे पहले प्रधानमंत्री ने अपनी यात्रा भूटान की थी, हमारे विदेश मंत्री ने जो सबसे पहली अपनी यात्रा की वो नेपाल, आपके देखने बांग्लादेश की। फिर जब अभी अंतरिक्ष प्रक्षेप वो छोड़े गए, हमारे आईएसएलवी परसों जो छोड़े गए उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने सार्क सैटेलाइट की बात की, और अब जबकि नेपाल के नागरिक वहां इराक में फंसे हुए हैं, भारत उनकी मदद करने के लिए तैयार है। तो भारत एक तरह से प्रोएक्टिव अप्रोच लेकर के चल रहा है। प्रोएक्टिव अप्रोच लेने का मतलब है कि हम आगे बढ़कर के उनकी मदद करें, अपनी तरफ से ऑफर करें, बजाय इसके कि हम इस बात की प्रतीक्षा करें कि वो हमसे रिक्वेस्ट करेंगे और फिर हम उनकी मदद करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बातें थी रेडियो समाचार की, और अब मैं आता हूं अखबारों के ऊपर। अखबारों में भी आज कुछ अच्छी चीजें हैं, हालांकि क्लिपिंग्स की संख्या कम है, लेकिन कुछ चीजें हैं। फ्रेंड्स, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट इशू धीरे धीरे रेज हो रहा है डिफेंस सेक्टर में, और इस पर मैंने काफी आर्टिकल्स डाले भी हैं, वो हो रहा है कि डिफेंस के सेक्टर में क्या 100% एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ किया जाए, मतलब सुरक्षा के क्षेत्र में क्या विदेशियों को ये अनुमति दी जाए कि वो पूंजी लगाएं, भारत में आएं और रक्षा उपकरणों का उत्पादन करें। ये सरकार प्रस्ताव पर विचार कर रही, इसको लेकर के डिस्कशन शुरू हो गए हैं, आपको मालूम है। अब क्या हो रहा है कि अभी तक बात इस बात की जा रही थी कि इसकी वजह से भारत जो विश्व का सबसे बड़ा एक तरह से रक्षा उपकरण का आयातक देश है, हम सबसे ज्यादा इम्पोर्ट करते हैं, अभी तक तो इस पर बात हो रही थी कि हमारा वो इम्पोर्ट बंद हो जाएगा, हमारे पास फॉरेन करेंसी बचने लगेगी, हमारे यहां लोगों को रोजगार मिलने लगेगा, हमारा आर्थिक विकास होगा, बस उसमें जो बात आ रही थी कि उसकी सुरक्षा को हम इंश्योर करें, तो डेफिनेटली करना पड़ेगा। अब बात ये भी होने लगी है पिछले 2-3 दिनों से, आप देखेंगे कि भारत रक्षा उपकरणों का, एक तरह से हथियारों का निर्यातक भी तो बन सकता है, हमारे पास सब चीजें हैं। पहले भी मैंने अंग्रेजी में एक आर्टिकल डाला था, आपको याद होगा, दो तीन दिन पहले ही डाला था। हमारे पास इसरो जैसे संगठन है, डीआरडीओ जैसे संगठन है, हमारे पास इतने बड़े ऑर्गेनाइज हॉल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, बहुत से संगठन है, इंजीनियर्स हैं। तो अगर हम सच में इन अपने जो हमारे पास इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो टैलेंट है, उसका सही तरीके से उपयोग करें, तो कोई ताज्जुब नहीं कि हम इनका निर्यात भी करने लगे। वो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, चीन ने ऐसा किया है। चीन कहां किसी समय सबसे बड़ा आयातक देश होता था, आज वो निर्यात करने लगा है। और इसके साथ ही आपको ध्यान होगा कि मैंने डिफेंस डिप्लोमेसी शब्द के बारे में भी आपको बताया था कि अगर हम छोटे देशों को इस तरह के डिफेंस की मदद देंगे तो डेफिनेटली उनके साथ हमारे संबंध बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड दो एडिटोरियल कमेंट्स और एक वैसे जनरल कमेंट्स मैं डाल रहा हूं। एक दैनिक भास्कर में आया है और दूसरा दैनिक जागरण में आया है। ये आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि एफडीआई पर पिछले साल भी क्वेश्चन आया था, और चूंकि डिफेंस का इश्यू बहुत है, और डिफेंस में दोस्तों अगर इस पर होता है तो बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। इसमें छोटी मोटी पूंजी से काम नहीं चलता, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़क बनवाने में बहुत पैसा लगता है, पावर प्रोजेक्ट में बहुत पैसा लगता है, ठीक उसी तरह से डिफेंस में भी बहुत पैसा लगता है। तो उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा तो कम से कम धन की कमी वाली समस्या हमारी सुलझ जाएगी। दोस्तों, इसी तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज के ही दैनिक जागरण में है, राजीव सचान जी का, जो इसके एसोसिएट एडिटर है और मेरे बहुत अच्छे परिचित और मित्र भी हैं, कि राज्यपालों की जरूरत ही क्या है। बिल्कुल सही बात है, कुछ दिनों पहले ही हम लोगों ने सवाल उठाया था कि राज्यपाल पर जिस तरह से बहस होने लगी है कि उनकी जरूरत क्या है। अगर आप पर्सनली मुझे पूछे फ्रेंड्स, क्योंकि 10 साल में उपराष्ट्रपति जी और राष्ट्रपति जी के साथ काम करने के कारण लगातार हम लोग जब कभी भी स्टेट में जाते थे तो वहां राजभवन में ही ठहरते थे, राज्यपाल से सीधे राष्ट्रपति जी का संबंध होता था। तो अगर मुझसे व्यक्तिगत रूप से पूछें, अगर कहें कि आप सिविल सर्विस के एग्जाम दे रहे हैं सर और बताइए कि आप किस पक्ष में तर्क देंगे, तो मैं ये कहूंगा कि इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसे खत्म कर दिया जाना चाहिए। क्यों खत्म किया जाना चाहिए, उसके अलग से तर्क हैं, उस पर मैं अभी नहीं जा रहा हूं। आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो उन्होंने इसमें बहुत अच्छे तर्क दिए हैं। मुझे जो सबसे अच्छा तर्क इसमें लगा, जो मेरे दिमाग में नहीं आया था, उन्होंने ये कहा कि सच पूछे तो 3-4 राज्यपाल ही सारे देश के का काम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि राज्यपाल बहुत जरूरी ही है, सच पूछे तो जरूरी बिल्कुल नहीं है, उनके काम को बड़े आराम से दूसरे लोग देख सकते हैं। बल्कि इनकी वजह से, राज्यपाल के पद की वजह से, एक फेडरल सिस्टम कमजोर पड़ रहा है, इस पर लगातार बात होती है। तो उन्होंने कहा कि 3-4 राज्यपाल बना दीजिए, एक को उत्तर का कार्यभार दे दीजिए, एक को दक्षिण का, एक को उत्तर पूर्व का, और इस तरह से पूरे काम चल जाएंगे, क्योंकि राज्यपाल के पास सच पूछे तो कुछ काम तो होता नहीं है उस तरीके से। मतलब हम बिजी व्यस्तता, ये तो एक नो डाउट कि उपसंवैधानिक पद है और एक गरिमापूर्ण पद है, वो सारी चीजें हैं, उसका निर्वाह करना होता है, पूरा पूरा स्टाफ होता है, लेकिन अगर मूल्यांकन कर इवेल्युएट करें वर्क के हिसाब से तो बड़े आराम से वो डाइवर्ट किया जा सकता है। इससे कितना पैसा सरकार का बचेगा, जो पॉलिटिकल जो एक तरह से बाधाएं खड़ी हो जाती हैं, अब आप देख रहे हैं कि इस्तीफा दीजिए नहीं दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, तो इस तरह के जो विवाद आते हैं वो विवाद की स्थिति खत्म हो जाएगी। संघीय ढांचे को कमजोर करने के बारे में जो आरोप लगता है वो चीजें खत्म हो जाएंगी। तो इसको करके इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, राजीव सचान जी ने, तो इसको आप जरूर पढ़िएगा और इसके जो इंपॉर्टेंट प्वाइंट हो कंटेंट के रूप में आप उसको लिख लीजिएगा। दोस्तों, एक और आर्टिकल है दैनिक जागरण में ही, बलवीर कुंज जी का, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो खासकर माओवाद के खिलाफ शंखनाद करके, तो नक्सलाइट मूवमेंट और ये जितने मूवमेंट है कहीं न कहीं माओवाद से जुड़े हुए हैं, अगर मतलब मोटे तौर पर देखें तो। इसमें इन्होंने एक दो बहुत अच्छी बात कही जो मुझे सबसे अच्छी लगी, जो मतलब पर्सनली मुझे नई लगी, वो ये इन्होंने कहा कि ये अक्सर ये कहा जाता है कि जो ये जो माओवाद है वहां पनपे हैं जहां लोगों का बहुत ज्यादा शोषण होता रहा है। ये दो लोगों का विरोध करते हैं, एक जो शोषक वर्ग है जिसमें पूंजीपति, ठेकेदार, सामंत, जमींदार, इनका विरोध करते हैं, और दूसरे इनके जो शत्रु हैं जिनको ये वर्ग शत्रु मानते हैं वो है सरकारी अधिकारी, क्योंकि उनको भी मानते हैं कि ये जो बड़े लोग हैं इन्हीं की रक्षा करते हैं। तो इन्होंने एक बहुत अच्छी बात की कि दंतेवाड़ा एक जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में, बस्तर एरिया का दंतेवाड़ा है, बोले कि न तो वहां कभी सामंती वर्ग रहा, और चूंकि वो बहुत दूर दराज में था तो अधिकारी भी वहां जाना पसंद नहीं करते थे, अधिकारी वर्ग का भी प्रभुत्व नहीं रहा, तो वहां फिर ये माओवादी क्यों पनप रहे हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने उठाया है कि बेसिकली ये जो माओवादी हैं अब जो है एक उगाही का काम करने लगे, आंकड़ों भी दिया है कि हर साल 1800 करोड़ रुपए की उगाही कर रहे हैं। तो इस तरह से एक अच्छा आर्टिकल है, कुछ नए व्यूज हैं, और ये भी टॉपिक आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और एक्सेप्ट करके मतलब एक्सेप्ट करने का मतलब इसके पेज बना लेने चाहिए और उसमें पॉइंट्स नोट करके चलना चाहिए ताकि धीरे धीरे चीजें इकट्ठी होती रहें। फ्रेंड्स, एक बिजनेस स्टैंडर्ड में एडिटोरियल कमेंट है, ये कमेंट केवल ये है, आपको पता है हम लोगों ने दो दिन पहले शायद इस पर चर्चा भी की थी और आर्टिकल भी मैंने डाला था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन को लेकर के, जो अभी जुलाई में पूरा हो जाना था लेकिन वो किसी वजह से नहीं हो सका, तो अब इसको फिर तीन महीने के लिए बढ़ाया गया है। उसके दो कारण रहे, नंबर एक कि जो जिनको फायदा दिया जाना चाहिए था उनको उनकी पहचान नहीं की जा सकी, और दूसरा जो खाद्यान्न पहुंचाने का जो बुनियादी ढांचा था उसको बहुत मजबूत नहीं किया जा सका था, तो उसको लेकर के एक एडिटोरियल कमेंट है। क्योंकि ये वेलफेयर प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है और हिन्दुस्तान का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जिसमें 1,00,000 करोड़ रूपये सालाना खर्च होता है, तो मैं समझता हूं कि उस दृष्टि से वो आपको थोड़ा सा एक रिवाइज कर लेना उपयोगी होगा। दोस्तों एक दो आर्टिकल हैं, ये इकोनॉमिक टाइम्स के हैं। एक तो सेकुलरिज्म को लेकर के एक बहुत अच्छा आर्टिकल टी के अरुण का है, बहुत अच्छा आर्टिकल है, मैं चाहूंगा कि आप इसको पढ़ें। इन्होंने सेकुलरिज्म, तो भारत में धर्म निरपेक्षता की बात कही जा रही है, उसको अच्छे तरीके से एनालाइज किया है कि कैसे इसका संबंध नंबर एक माइनॉरिटी और मेजॉरिटी से नहीं है, कैसे इसका सीधा सीधा संबंध इकोनॉमिक डेवलपमेंट से है, और फिर इसको इन्होंने मॉडर्न कॉन्सेप्ट में एनालाइज करने की कोशिश की है। और मैं समझता हूं कि इस पर आप इस टॉपिक पर सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट की बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना आप इंडियन पॉलिटिक्स को अच्छे तरीके से नहीं समझ सकेंगे, इसके बिना आप इंडियन सोशल स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझ सकेंगे। और बट नेचुरल है कि जब आप इन चीजों को नहीं समझ सकेंगे तो फिर आप अगर इस विषय पर ऐसे लिखने को आ जाता है तो आप उसको भी मॉडर्न तरीके से एनालाइज नहीं कर सकेंगे, फिर तो वही घिसी पिटी चीजें जो हम लोग अभी तक सुनते आ रहे हैं और अपनी किताबों में पढ़ते रहे हैं वहीं तक सीमित रह जाएंगे, और वही एक बहुत बड़ा कारण होता है कि जनरल स्टडीज में इतने कम फिर स्कोर हो पाते हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स एक सोलर एनर्जी पर एक आर्टिकल है, ये बिल्कुल अच्छा आर्टिकल नहीं है, मैंने केवल डाल दिया है कुछ लाइनें अंडरलाइन करके। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो सोलर एनर्जी के पेज पर आपको नोट कर लेना चाहिए कि भारत ने जो सोलर का जो मॉड्यूल्स बनाया है उसको जापान और जर्मनी जैसे खरीद रहे हैं, वहां हमारी चीजें जा रही हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जापान और जर्मनी दोनों टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत उन्नत देश है और वो भी हमारी टेक्नोलॉजी को खरीद रहे हैं, तो भारत क्यों नहीं कर सकता। तो उसमें प्राइस को लेकर के जो डंपिंग ड्यूटी है वो उन्होंने बात उठाई है। मैं नहीं समझता कि डंपिंग ड्यूटी की बात खासकर सोलर एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में आपके लिए उतनी ज्यादा जरूरी है जानना, क्योंकि वो एक टेक्निकल इश्यू है, हमें तो इसको जनरल स्टडीज के रूप में जानना है तो हमारे लिए उतना ही पर्याप्त होगा। तो इसको इसके चक्कर में आप बहुत ज्यादा पढ़िएगा मत, केवल मैंने जो अंडरलाइन किया है उतना ही पढ़ लेंगे, समझ लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। फ्रेंड्स अब मैं आज प्री के ऊपर आपसे कुछ भी चर्चा करने नहीं जा रहा हूं समय को देखते हुए, क्योंकि तीन दिन के मेल, मतलब आप समझ लीजिए कि दो दिन के मेल पूरे के पूरे सोमवार के और मंगलवार के मेरे पास है और मेल्स की संख्या बहुत ज्यादा है, तो मैं उसके लिए थोड़ा सा समय लेना चाहूंगा। तो सबसे पहले तो मैं कुछ प्रश्नों के उत्तर दे दूं जो मेल्स में, सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद दे दूं जिन्होंने गौरव अग्रवाल की मैंने समीक्षा की थी उसके बारे में अपने कमेंट दिए हैं, ऑडियो गाइडेंस के बारे में अपने कमेंट दिए हैं, उन सबके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, उन सबको धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि चूंकि उनको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको दूसरों को भी बताएं और लगातार बताते रहें। अगर आप एक बार बता करके छोड़ेंगे तो आत्मसंतोष के लिए तो ठीक है, लेकिन काम को कार्य रूप में बदलने के लिए वो ठीक नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे कि अर्जेंटीना 67% बॉल तो अपने पास उसने रखा लेकिन गोल में कन्वर्ट नहीं कर पाया, उसी तरह से एक्शन इस तरह से कीजिए कि वो रियलिटी में कन्वर्ट हो, अदरवाइज फिर वो एक्शन भी एक फ्यूटाइल एक्शन हो जाता है। राइट फ्रेंड्स, तो जिनको मुझे धन्यवाद देना है और आभार व्यक्त करना है उनके मैं नाम बता देता हूं, काफी लंबी लिस्ट है लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है लंबी लिस्ट देखकर। विनीत कुमार राव की है दिल्ली से, आपने विनीत जी गौरव की वेबसाइट भी जाननी चाहिए, देखिए गौरव नाम से अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको तुरंत वेबसाइट मिल जाएगी। राइट, विनीत कुमार राव की है दिल्ली से, अतुल शर्मा है भिवानी से, भावना शर्मा है जयपुर से, दिव्या मालवीय है राजनांदगांव से, देवेंद्र ताम्रकर हैं, योगेश हैं, अंजलि हैं सिवनी से मध्यप्रदेश से, चंद्रशेखर साहू हैं, शक्ति सिंह हैं, जासोल बाड़मेर से महेश परमार हैं, स्वर्णिका कुमारी हैं। स्वर्णिका जी आपने मैडम का नंबर जानना चाहा है तो मैं रिपीट कर देता हूं, मैडम का नंबर है 0755, यह एसटीडी कोड है और लैंडलाइन नंबर है 4059797। मैडम का नंबर फिर से मैं रिपीट करता हूं 0755 और फिर टेलीफोन नंबर है 4059797। मैं फिर से यहां पर रिपीट कर दूं कि जो भी मेरे प्रिय श्रोता हैं, अगर उनको कोई मानसिक उलझन है, कोई उस तरह की सलाह लेना चाहते हैं, तो वो मैडम से बात कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि जो समय है वो दिन में 11 बजे से 1 बजे के बीच का समय है। फिर है अंकित हैं, धीरेन्द्र उत्तम हैं, भिवानी से ही भरत हैं, रांची से हरिशंकर प्रसाद हैं, नागपुर से सोनिका स्वराज्य हैं, लखनऊ से मयंक वर्मा हैं, जयपुर से बीएस मीना हैं, राहुल जैन हैं, रीवा से संजय द्विवेदी हैं, आदित्य शर्मा हैं, आदित्य कुमार हैं और नोएडा से आदित्य पासवान हैं, बनारस से बाल गोविंद हैं, सुधीर हैं, कानपुर से सदगुरु यादव हैं, एचएस चौधरी हैं, ऋषभ कुमार हैं ग्वालियर से और हजारीबाग से चंद्रदीप गांधी हैं, प्रवीण भारद्वाज हैं और नागपुर से अजीत शाह हैं। इन सब ने व्यक्त किया है कि उनको अच्छा लगता है, ऑडियो गाइडेंस उनको फायदा मिल रहा है, तो इसके लिए मैं आप सबके प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं, अपनी टीम की तरफ से धन्यवाद देता हूं। फ्रेंड्स, मुझे सब्जेक्ट सुझाए गए हैं, जो मैंने आप लोगों से कहा था कि संडे को मैं किस टॉपिक को लेकर के आप लोगों से बात करूं, तो कई सब्जेक्ट मेरे पास आए हैं, एक ही सब्जेक्ट को कई लोगों ने भी सुझाया है, तो मैं अब ये डिसाइड करके घोषणा करूंगा कि इसमें से किस सब्जेक्ट पर मैं संडे में आपसे बात करूंगा। डेफिनेटली सब्जेक्ट वही होगा जो आप लोगों ने सुझाए हैं, क्योंकि मुझे तो आप लोगों की जरूरत की पूर्ति करनी है, अपने आप को आप लोगों के ऊपर थोपना नहीं है। फ्रेंड्स, इसके बाद कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्लास के बारे में जानना चाहा है, तो उसमें रईस खान है। रईस जी, आपने तो रजिस्ट्रेशन करा लिया है, बहुत अच्छी बात है, आपका स्वागत है, धन्यवाद। आपने जानना चाहा है कि क्या हॉस्टल की फैसिलिटी है, सभी के लिए ये फायदेमंद होगा जो भी इसके बारे में सोच रहे हैं। डेफिनेटली अगर कोई स्टूडेंट एकेडमी को यह जिम्मेदारी सौंपता है कि उसके रहने की व्यवस्था की जाए, तो आपके पेमेंट पर वो व्यवस्था एकेडमी करेगी, हॉस्टल की बिल्कुल व्यवस्था होगी। अपने स्टूडेंट की संख्या के बारे में जानना चाहा है, मैं केवल ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि क्वालिटी के बेस पर हम कभी भी क्वांटिटी को एग्री नहीं करेंगे। अभी हमने कोई संख्या फिक्स नहीं की है, लेकिन ये विश्वास रखिए कि आपके पढ़ने की गुणवत्ता पर कतई कोई फर्क एकदम नहीं आएगा। इसके बाद धर्मेंद्र कुमार हैं बेंगलोर से, इन्होंने अपनी बहन के बारे में पूछा है कि वो क्लासेस ज्वाइन करना चाहती हैं, क्लासेस के बारे में डिटेल जानना चाह रहे हैं। तो धर्मेंद्र जी, अगर आप इसी वेबसाइट पर क्लासेस वाले पर चले जाएंगे तो वहां सारी डिटेल्स क्लासेस के बारे में दी हुई हैं। इसी तरह से मेरी जो पुस्तक है आप आईएएस कैसे बनेंगे, उसके भी लास्ट पेज पर क्लासेस के बारे में दिया हुआ है। कुल मिलाकर के जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि 27 अक्टूबर से क्लासेस शुरू होंगी, 10 नवम्बर को क्लासेस खत्म हो जाएंगी, डेली 6 घंटे की क्लासेस होंगी, 90 आवर्स की टीचिंग होगी। इसके बाद ऑडियो गाइडेंस से वो स्टूडेंट लगातार मुझसे जुड़े रहेंगे, उनके लिए हम स्पेशल ऑडियो गाइडेंस लॉन्च करेंगे, उनको थोड़ा बहुत बेसिक रीडिंग मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे, और इस क्लास के दौरान 15 दिन की क्लास के दौरान उसकी जो सिविल सर्विस की जो बेसिक्स होनी चाहिए वो बेसिक्स पर जोर दिया जाएगा, स्ट्रांग किया जाएगा, और उसके लिए जो भी साइकोलॉजिकल और मोटिवेशनल और जितनी भी चीजें होंगी वो अलग तरह का क्लास का स्ट्रक्चर किया गया है। इसकी फीस केवल 13,000 रूपये है, लेकिन अभी जो भी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उनको ये पूरा का पूरा कोर्स 11,000 का पड़ेगा। अभी आपको सिर्फ 2,000 रूपये देकर के अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, जो आप SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एकेडमी के बैंक अकाउंट में जमा करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, आपकी सीट सुरक्षित हो जाएगी। जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो फिर अक्टूबर में आपको देना होगा। संक्षिप्त में ये है, और डिटेल्स जानने के लिए आप क्लासेज वाले उसमें चले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक इसी तरह से पवन कुमार ने भी कोचिंग के बारे में जानना चाहा है, तो पवन जी अभी जो मैंने डिटेल में बताई है, जो बातें बताई हैं, मैं समझता हूं कि उससे आपकी भी जरूरत पूरी हो जाएगी। फ्रेंड्स, कि तीन और ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपनी समस्याओं के बारे में लिखा है कि कोई कह रहे हैं कि हमें गाइड कीजिए, कोई कह रहे हैं कि प्लीज हेल्प मी, और कोई कह रहे हैं कि मैं सब्जेक्ट कैसे ऑप्शनल पेपर का चयन करूं। तो फ्रेंड्स, इन सबके लिए मेरी सलाह है कि आप सभी, जिसमें मैं नाम लूंगा, कविता शर्मा है शिमला से, अंकित त्रिपाठी है इटावा से और हरेंद्र सिंह भरतपुर से, कि आप मेरी एक पुस्तक है उसका नाम है आप आईएएस कैसे बनेंगे, इसको पढ़ें, इसमें आपको अपने सारे प्रश्नों के बहुत सही उत्तर मिल जाएंगे। तो मित्रों, मैं इसी के साथ ही अब आज के इस ऑडियो गाइडेंस को समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। कल हम लोग फिर मिलेंगे और कल के इश्यूज पर फिर से बात करेंगे। मैं जहां तक समझता हूं, पता नहीं मेरे जो प्रिय श्रोता हैं और जो शुरू से इसको सुन रहे हैं, वो अपने आप को कितना इम्प्रूव्ड महसूस कर रहे हैं, इम्प्रूव्ड इन द रियल सेंस, नॉट इन द सेंस ऑफ कंटेंट बट इन द सेंस ऑफ पावर इनहेंसिंग देयर क्रिटिकल एप्रिसिएशन, कि कितना वो महसूस कर रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज बताऊं फ्रेंड्स कि मैं इसको बहुत एंजॉय कर रहा हूं, बहुत एंजॉय कर रहा हूं और मैंने अपने को बहुत इम्प्रूव किया है, क्योंकि अदरवाइज बहुत छोटी छोटी चीजों से, नॉलेज से मेरा संबंध नहीं रह गया था कि मैं सिविल सर्विस की तैयारी नहीं कर रहा हूं। लेकिन आप लोगों को गाइड करने के पूरे प्रोसेस में मेरी बहुत डेप्थ बढ़ती जा रही है और मुझे मजा आ रहा है, मुझे अब चीजों में बहुत गहराई महसूस होने लगी है और डेफिनेटली मुझे खुशी है कि मैं ये अपना नॉलेज और अपना स्किल आप लोगों के साथ ऑडियो गाइडेंस के जरिए बांट रहा हूं, इसको मैं क्लासेस के जरिए बांटूंगा, मैं अपने लेखन के जरिए बांटूंगा और सबसे बड़ी बात है कि फिर मैं, चूंकि मैं पॉलिटिकल कमेंटेटर भी हूं, लगातार मैं कॉलम्स लिखता हूं, तो उसमें भी ये चीजें उभर कर आएंगी और इससे मेरा ही फायदा होगा। तो आप लोगों ने, मैं कभी कभी मुझे लगता है कि अवसर प्रोवाइड किया है या कुछ ईश्वरीय कृपा थी कि ये दिमाग में आइडिया आया कि ऐसा कुछ किया जाए और मैं कर रहा हूं और इससे मुझे फायदा हो रहा है और मुझे विश्वास है कि जैसे कि आपके सबके मेल से लगता है आप लोगों को भी फायदा हो रहा है। तो मित्रों, इसी के साथ ही अब मैं इजाजत लेता हूं, आपका दिन शुभ हो और उससे भी बड़ी बात है कि आपका दिन बहुत उपयोगी हो। नमस्कार।